महाभाष्य पशुपसानिक के पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि व्याकरण के तीन प्रवर्तक मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा जिसमें कि 4000 के लगभग सूत्र हैं। कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ लिखा जो कि सूत्र में उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो बातें हैं उन बातों के लिए उन्होंने वार्तिक को लिखा था, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य में पाणिनि के सूत्र एवं कात्यायन के वार्तिक दोनों का व्याख्यान किया गया है। तो इसमें पाणिनि के सूत्र भी हैं और कात्यायन के वार्तिक भी हैं, उन दोनों का पूरी तरह से इसमें विवेचन प्राप्त होता है। महाभाष्य के रचयिता जो पतंजलि हैं, आपने सिद्धांत कौमुदी में पररूप संधि प्रकरण में पढ़ा होगा, पतत अंजलि ही पतंजलि ही। पतत में जो अत है उसकी टी संज्ञा हो करके उसका अंजलि के आकार में पररूप हो जाता है तो पतंजलि बनता है। अर्थात इनका जन्म जो हुआ था, जनश्रुति ये है कि एक ऋषि अर्घ्य दे रहे थे, सूर्यार्घ्य दे रहे थे, तो उस समय में उनके अंजलि से जो जल गिर रहा था, अंजलि से जो जल का पतन हो रहा था, उसी जल के साथ जो है एक सांप के बच्चे का जो है ना सपोला जिसको कहते हैं वो गिरा, और वही जो है पतंजलि बने थे। पतंजलि के बारे में ये भी मान्यता है कि ये शेष नाग के अवतार हैं, और जैसा कि जानते हैं कि शेष नाग के 1000 फणा होते हैं, 1000 सिर होते हैं, 1000 मुख होते हैं, तो पतंजलि को भी भगवान माना जाता है, शेष नाग का अवतार माना जाता है, और इनके भी 1000 मुख माने जाते हैं। खैर ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। अब थोड़ा सा महाभाष्य शब्द जो है इसके ऊपर हम विचार कर लेते हैं। महाभाष्य में महान जो भाष्य है उसको महाभाष्य कहते हैं। तो भाष्य पहले किसे कहते हैं ये समझ लें। तो भाष्य कहते हैं व्याख्यान को। भाष्य मतलब व्याख्यान या व्याख्या। व्याख्यान या व्याख्या किसको कहते हैं, तो उसमें जो है 5-6 चीज़ें अगर व्याख्यान में हो तो उसको भाष्य कहा जाता है या व्याख्यान कहा जाता है। वो क्या है, एक तो है पदच्छेद, माने पदच्छेद होना चाहिए, जैसे सूत्र वार्तिक है उसमें पद का विभाग होना चाहिए, बताना चाहिए। पदच्छेद पदार्थोक्ति ही, और पद के अर्थ की उक्ति होनी चाहिए, माने पद के अर्थ को बताना चाहिए। तो पदच्छेद पदार्थोक्ति ही, और विग्रह विग्रह भी होना चाहिए। विग्रह मतलब व्युत्पत्ति, जैसे कोई कृदंत शब्द है, कोई तद्धितांत शब्द है, या कोई समास शब्द है, तो उसके जो शास्त्रीय अर्थ हैं, शास्त्र में जिस तरह से उसकी व्युत्पत्ति की जाती है, उस व्युत्पत्ति को भी व्याख्यान के अंतर्गत बताना चाहिए। तो पदच्छेद पदार्थोक्ति ही, विग्रहो वाक्य योजना, और वाक्य योजना भी होनी चाहिए। वाक्य योजना का मतलब यह है कि सारे पदार्थों को मिला करके जो एक वाक्यार्थ बन जाता है, वह वाक्य के रूप में उस सूत्र का अर्थ होना चाहिए या उस वार्तिक का अर्थ होना चाहिए, यही है वाक्यार्थ योजना। योजना मतलब संबंध होता है, माने सभी पदार्थों के का संबंध जोड़ देंगे, बना लेंगे तो वाक्य बन जाएगा। तो वाक्यार्थ योजना भी व्याख्यान के अंतर्गत होना चाहिए, माने सारे पदार्थों का संबंध भी बताया जाना चाहिए। सारे पदार्थों का जो संबंध है उसी का नाम वाक्य होता है। और फिर है आक्षेपोथ समाधानम, माने आक्षेप और समाधान भी उसमें होना चाहिए। आक्षेप का अर्थ यहाँ पर शंका कर लें, और समाधान आप जानते ही हैं उसका उत्तर देना। तो शंका और समाधान, आक्षेप अथ समाधानम, आक्षेपोथ समाधानम, व्याख्यानम पंच लक्षणम। इस तरह से व्याख्यान जो होता है वो पंच लक्षण होता है, यानी पांच उसके लक्षण है व्याख्यान के। क्या क्या? एक तो पदच्छेद होना चाहिए, दूसरा पदार्थोक्ति होना चाहिए, तीसरा विग्रह होना चाहिए, चौथा वाक्य योजना होना चाहिए, और पांचवा आक्षेप और समाधान होना चाहिए। आप चाहें तो कॉपी पर ये नोट भी कर लें इस श्लोक को, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि दो नंबर में ये भाष्य का लक्षण भी पूछ देते हैं, तो उसमें आप इसको लिख लेंगे तो बहुत कुछ तो याद हो ही गया होगा। फिर भी मैं धीरे से बोल करके आपको लिखाने का प्रयास करता हूँ व्याख्यान का लक्षण क्या है। जो व्याख्यान का लक्षण है वही भाष्य का भी लक्षण है। तो पदच्छेद पदार्थोक्ति, पदच्छेद पदार्थोक्ति, पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, विग्रहो वाक्य योजना, विग्रहो वाक्य योजना। लिख लिया आपने पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपोथ समाधानम। आक्षेप के आगे अथ है, उसमें संधि होने से आक्षेपोथ हो गया, उसमें अर्धाकार आएगा, तो आक्षेपोथ समाधानम। आक्षेपोथ समाधानम। फिर लास्ट में लिखिए व्याख्यानम पंचलक्षणम, आक्षेपोथ समाधानम, व्याख्यानम पंचलक्षणम। एक बार फिर से मिला लीजिए, पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपोथ समाधानम, व्याख्यानम पंचलक्षणम। ठीक है, इस तरह से व्याख्यान के ये पांच लक्षण हैं। तो भाष्य में भी जो है ऐसे भाष्य का एक और लक्षण जो है प्रसिद्ध है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यम सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। ये जो है ना भाष्य का प्रॉपर लक्षण है, और ये जो मैंने पंच लक्षण वाला कहा था ये व्याख्यान का लक्षण है। ऐसे व्याख्यान और भाष्य, भाष्य का अर्थ व्याख्यान ही होता है, लेकिन इस श्लोक को भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगर वो दो नंबर में पूछता है तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। लिखिए सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, वाक्यम सूत्रानुसारी भी, वाक्यम सूत्रानुसारी भी, वाक्यम सूत्रानुसारी भी। फिर स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यम भाष्य विदो विदुः, भाष्यम भाष्य विदो विदुः, भाष्यम भाष्य विदो विदुः। एक बार फिर से सुन लीजिए, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यम सूत्रानुसारिभिः। ऐसा करिए वाक्यम को ना वाक्यैः बना दीजिए, तृतीया के बहुवचन वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः, यही ठीक अच्छा लगता है। तो सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदो। इसका मतलब भी समझ लीजिए, आसान ही है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, माने जत्र जिसमें सूत्र का अर्थ का वर्णन हो, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, और वाक्य ही सूत्रानुसार भी, और किस तरह के वाक्यों के द्वारा वर्णन हो, तो सूत्र अनुसारी वाक्य के द्वारा वर्णन हो, माने सूत्र में जो कहा गया जिस तरह से बताया गया है उस तरह के वाक्यों का प्रयोग करके फिर जो है उस सूत्र के अर्थ को बताया गया। कोई कोई जो है ना वाक्यम सूत्रानुसार भी इस तरह का भी कहीं पाठ मिलता है, कोई कोई बोलते हैं वहाँ वाक्यम का अर्थ जो है ना वार्तिक विद्वान लोग करते हैं कि वार्तिक का भी जो है जहाँ पर व्याख्यान किया गया हो। तो दोनों तरह का व्याख्यान आप कर सकते हैं कि जिसमें सूत्र के अर्थ का विवरण हो, जिसमें वार्तिक के अर्थ का विवरण हो, और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और स्वपद माने व्याख्याकार के जो अपने पद हैं, अपने द्वारा उच्चारित पद हैं, उन पदों का भी जहाँ वर्णन किया गया हो। भाष्यम तद भाष्यम भाष्यम भाष्य विदो विदो, इस तरह की का जो व्याख्यान है उसी को भाष्य कहा जाता है। भाष्यविद लोग जो हैं माने भाष्य के जो जानकार हैं, इस तरह के भाष्य को, इस तरह की व्याख्या को ही भाष्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर के भाष्य में क्या हुआ, तीन बातें हुई। एक तो इसमें सूत्र के अर्थ का वर्णन होता है, दूसरा वाक्य का वर्णन होता है, वाक्य माने वार्तिक के अर्थ का वर्णन होता है, और तीसरा कि इसमें स्वपद का माने स्व उच्चारित पद का भी वर्णन होता है, माने व्याख्याकार के द्वारा जो स्वयं का जो उच्चारित पद है उन पदों का भी वर्णन किया जाता है। ऐसा जहाँ वर्णन उपलब्ध हो, जिसमें सूत्रार्थ वर्णन हो, वार्तिकार्थ वर्णन हो और स्व उच्चारित पदार्थ वर्णन हो, उस व्याख्यान को हम भाष्य कहते हैं। तो दोनों ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये जो लास्ट में जो मैंने बताया भाष्यकार जिसमें सूत्रार्थ वार्तिकार्थ और स्व पदार्थ का वर्णन हो, ये वाली बात ज़्यादा मुझे जचती है। इसलिए अगर भाष्य का लक्षण पूछे तो पहले ये लिख देना, बाद में जो है ना वो व्याख्यानम पंच लक्षणम वाला उसको लिख देना। तो इस तरह से भाष्य किसको कहते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब भाष्य में जो महाल विशेषण लगाया गया है कि महच्च भाष्यम महाभाष्यम, इसमें कर्मधारय समास है कि जो महान भाष्य है उसको हम महाभाष्य कहते हैं। जैसे जो महान राजा है उसको महाराज कहते हैं, उसी तरह से जो महान भाष्य है उसको हम महाभाष्य कहते हैं। तो यह जो भाष्य है ये महान कैसे है, तो महान इसलिए है कि इसमें जो है सारे सूत्रों और वार्तिकों का व्याख्यान इसमें है, और स्वयं के द्वारा जो है ना ऊह की हुई बातें भी इसमें पतंजलि ने बताई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस महाभाष्य को जो है ना अंतिम प्रमाण माना जाता है। व्याकरण में जब कभी कोई संशय होता है तो उस संशय का निराकरण व्याख्यान के द्वारा किया जाता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षण, माने व्याख्यान के द्वारा ही जो है ना संदेह की निवृत्ति व्याकरण शास्त्र में की जाती है। और वह जो संदेह की निवृत्ति है व्याख्यान के द्वारा, वह व्याख्यान का मतलब भाष्य ही होता है। भाष्य के को आधार में लेकर के, भाष्य को प्रमाण मान करके ही जो है व्याकरण वाला जो भी संशय होता है उसका निराकरण किया जाता है। तो इस तरह से यह व्याकरण शास्त्र के लिए प्रमाण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी भी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वह भी प्रमाण ग्रंथ है, कात्यायन का जो वार्तिक ग्रंथ है वह भी प्रमाण ग्रंथ है, और महाभाष्य जो है ये भी प्रमाण ग्रंथ है। लेकिन इन तीनों में भी अगर देखें, क्योंकि सबसे अंत में महाभाष्य की रचना हुई है, इसलिए महाभाष्य की प्रामाणिकता जो है वह सबको मान्य है। महाभाष्यकार जैसा कहते हैं वैसा ही सारे व्याकरण मानते हैं, और यही चीज जो है ना इनकी महानता है, यही इनका महत्व है, इसीलिए इस भाष्य को महाभाष्य कहते हैं। ठीक है, भाष्य जो है ना सभी बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं, लेकिन सबको भाष्य ही कहा जाता है। जैसे ये न्याय दर्शन का भाष्य है, मीमांसा दर्शन का भाष्य है, वेदांत दर्शन का भाष्य है, योग दर्शन का भाष्य है, लेकिन सबको भाष्य बोलते हैं, महाभाष्य किसी को नहीं बोलते। महाभाष्य जो है ना केवल और केवल पतंजलि के द्वारा जो किया गया भाष्य है इसी को महाभाष्य कहते हैं। इसी से इसकी विशेषता जो है आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी विशेषता है, क्योंकि बाकी भाष्य कहलाते हैं और यह जो है महाभाष्य कहलाता है। अब इस महाभाष्य की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, इस पर भी एक बहुत बड़ा विवाद है। जैसे व्याकरण संप्रदाय में मान्यता ये है कि शुरुआत जो हुई है महाभाष्य की वो अथ शब्दानुशासनम से हुई है। लेकिन इसमें जो कुछ और विद्वान हैं, जैसे आर्य समाज के लोग हैं या मेधा अतिथि नाम के मनुभाष्यकार हैं, इन लोगों का मानना है कि नहीं, ये अथ शब्दानुशासनम जो है ये पाणिनी का प्रथम सूत्र है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। इस पर विवाद है, लेकिन हम हमारी परंपरा में, हमारे गुरुजनों की परंपरा में अथ शब्दानुशासनम से ही जो है महाभाष्य का आरंभ माना गया है और पाणिनी अष्टाध्यायी का प्रारंभ वृद्धिरादेच से माना गया है। तो यह अथ शब्दानुशासनम ही महाभाष्य का प्रथम वाक्य है, और चूंकि आप भी हमारी परंपरा में हैं तो आपको भी यही स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि भाष्य का जो आपने लक्षण पढ़ा उसमें था ना, स्व पदानि च वर्ण्यन्ते, माने स्व उच्चारित पद का भी जो है ना इसमें विवरण होता है। तो भाष्यकार ने अथ शब्दानुशासनम स्वयं उच्चारण किया, और अथ शब्दानुशासनम में जो तीन शब्द हैं, अथ शब्द है, शब्द शब्द है, अनुशासन शब्द है, इनमें से अथ शब्द का और शब्द शब्द का जो है इन्होंने स्वयं विवरण प्रस्तुत किया है। तो स्व पदानि च वर्ण्यन्ते के अनुसार इसमें स्व उच्चारित पद जो है पतंजलि का अथ और शब्द, इसका भी उन्होंने विवरण किया है जो कि भाष्य के लक्षण के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको महाभाष्य का प्रारंभ यहीं से मानना चाहिए। तो आज का पाठ जो है आपका बिल्कुल भूमिकात्मक ये पाठ था, और इस पाठ को आपने सुना और समझा। इसमें जो हमने दो लक्षण बताए हैं, एक व्याख्यान का लक्षण और एक भाष्य का लक्षण, इसको जो है आपने जरूर नोट किया होगा और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर हम अगले पाठ में, ग्रंथ में हम प्रवेश करेंगे, तो आज का पाठ यहीं पर स्थगित करते हैं।